ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद नई दिल्ली में ये समझौते हुए। दोनों देशों ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ साथ इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्षों के मद्देनजर शांति बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष भारत और जर्मनी के लिए चिंता का विषय है और भारत का हमेशा से मानना रहा है कि युद्ध के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नवाचार और प्रौद्योगिकी रोडमैप लॉन्च किया गया है।
आज हमारे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रोडमैप लॉन्च किया गया है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा।
जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया है और वो आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते का भी पुरजोर समर्थन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जर्मनी की अनुभवी अभियांत्रिकी कौशल के साथ भारत की क्षमता दुनिया के लिए लाभकारी साबित होगी। आज नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस की 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई पहल की हैं। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने बताया कि पहले देश में केवल 6 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान थे और वर्तमान में ये संख्या 22 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में और 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला किया है। केंद्र ने 21वीं पशुधन गणना के साथ पशुओं में महामारी से निपटने की तैयारियों तथा देश में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर आज महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार 2030 तक देश से खुरपका और मुंहपका रोग तथा ब्रुसेलोसिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा की बेहतर स्थिति सेना और अन्य एजेंसियों के ठोस और समन्वित प्रयासों का नतीजा है। कश्मीर में हाल में आतंकी हमलों में वृद्धि पर उन्होंने कहा कि कल श्रीनगर में एकीकृत मुख्यालय में हुई बैठक में आतंकी हमलों से निपटने की रणनीति तैयार की गई। श्री कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों ने पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 720 आतंकियों को ढेर किया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 552 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। भीषण चक्रवात दाना ने कल ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच पहुंचने के साथ ही तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है। पुणे में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में दूसरे दिन 5 विकेट पर 198 रन बनाए। न्यूजीलैंड की कुल बढ़त 301 रन की हो गई है। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी में आज भारतीय जूनियर हॉकी टीम और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। भारत 10 अंकों के साथ अभी भी तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।